लिया, भगवान ने जन्म लिया तो जन्म लिया कि नहीं लिया, क्योंकि भगवान तो अजन्म नहीं रहते, भगवान को क्या जन्म होगा, लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं। तो इसके इनर डायनामिक्स क्या है और किस तरह से उनका जन्म लेना और हमारा इस संसार में जन्म लेना कुछ फर्क है या एक ही है, इसकी
हरे कृष्णा। सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए और लाहौर की शांति कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहार, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव गोपी जना वल्लभ देवरारी, गोपी जना
I'm not afraid of the dark. कि जो मेरे भक्त होते हैं वो किसी चीज में सर्वोत्कृष्ट या सर्वोच्च आनंद की अनुभूति करते हैं, तो वो है मेरा जो कथा है, मेरी जो महिमा है, मेरा वर्णन करना और मेरे बारे में श्रवण करना। तो भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए इस बात को स्थापित करते हैं कि वास्तव में मेरे भक्तों का ये गुण है, और ये गुण तब अधिक हमें प्राप्त होता है या देखने को मिलता है जब हम श्रीमद् भागवतम को समझते हैं, या श्रीमद् भागवतम से कृष्ण के जो वर्णन है, कृष्ण के जो कार्यकलाप है, उनको पढ़ते हैं या उनको श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में कृष्ण लीलाओं का वर्णन आता है, और अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आने वाले जो ये 3 दिन हैं, उनमें हम कृष्ण की जो महिमा है, कृष्ण की जो वृंदावन लीलाएं हैं, उनका श्रवण करेंगे। तो ऐसे कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम में अपनी जो दिव्य लालसा है वो प्रदान करते हैं, या उसको स्थापित करते हुए कहते हैं, जब परीक्षित महाराज पूरे भारत वर्ष के राजा थे, और ऐसे परीक्षित महाराज को अचानक श्रृंगी ऋषि के द्वारा शाप प्राप्त होता है, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे तो ये कृष्ण की एक अनुकंपा है, कृष्ण की एक विशेष कृपा मेरे ऊपर हुई है कि कृष्ण मुझे अपने करीब बुलाना चाहते हैं, अपने करीब स्थान प्रदान करना चाहते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज को जब शाप मिला, तो परीक्षित महाराज ने उससे बचने का प्रयास नहीं किया, परीक्षित महाराज ने तुरंत ही अपने सारे कार्यकलापों को त्याग कर तुरंत ही गंगा नदी का आश्रय लिया, और गंगा के किनारे जाकर जहां बहुत सारे ऋषि मुनि साधु वैष्णव थे, उनके पास जाकर उन्होंने एक निवेदन किया कि मुझे तो ये भय नहीं है, मुझे किस चीज का भय नहीं है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मैं तो केवल यही चाहता हूं कि आप जैसे साधुगण, आप जैसे महान मुनिगण या वैष्णवगण क्या करो, कृष्ण की महिमा का गान करो, गायतः कृष्ण गाथा। क्योंकि सर्वसाधारण रूप से इस संसार में हर एक व्यक्ति भयभीत रहता है, क्या है सर्वाधिक भय, मृत्यु का भय है। लेकिन ऐसे परीक्षित महाराज को जो शाप मिला, तो वो उस भय की चिंता में नहीं थे, उससे बचने के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके पास इतना सामर्थ्य था, उनके पास इतना शक्ति था, उससे वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने गंगा का आश्रय लिया और वहां जाकर सारे भक्तों से यही निवेदन किया कि मुझे उस तक्षक सांप, जिसको पंख है, उड़ने वाला जो सर्प है, वो मुझे डसेगा, उससे मेरी मृत्यु होगी, उसका मुझे भय नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करो, गायतः कृष्ण गाथा, आप लोग कृष्ण की महिमा का वर्णन करो। तो वास्तव में ऐसे परीक्षित महाराज ये स्थापित करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सर्वात महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यकलाप है वो क्या है, कि कृष्ण के बारे में सुनने के लिए तत्पर होना। क्योंकि हम जिस व्यक्ति के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम सुनते हैं, नेचुरली उस प्रकार से हमारा चरित्र का विकास होता है, उस प्रकार से हम ढालने लगते हैं, उस प्रकार से हम बन जाते हैं, या जिस व्यक्ति के बारे में, विषय के बारे में हम सुनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उससे हमारा प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसे परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवतम कहता है कि वो सर्वात अधिक बुद्धिमान थे, तो ऐसे परीक्षित महाराज के ऊपर जब ये विपदा आई, तो परीक्षित महाराज ने देखा कि इस विपदा से बचने के लिए परम भगवान कृष्ण ने उसी क्षण शुकदेव गोस्वामी को अरेंज किया था। तो परीक्षित महाराज जैसे ही गंगा के किनारे गए, तो शुकदेव गोस्वामी का वहां आगमन होता है, और शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज के समक्ष खड़े हो जाते हैं और वो बैठने के लिए वो आसन प्रदान करते हैं, तो बड़े ही विनम्रता की भावना को अपने हृदय में धारण करके परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं। और क्या प्रश्न है, परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है वो उनके लिए पर्सनली नहीं थे, परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है वो सारे विश्व के लिए है, सारे जनमानस के लिए है, जिसके पास भी ये मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का देह है उस व्यक्ति के लिए वो प्रश्न थे। उन्होंने कहा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। हे शुकदेव गोस्वामी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सारे जगत के गुरु हो। क्या प्रश्न है? कि जो व्यक्ति मरणासन्न है, मृत्यु के बहुत नजदीक है, उस व्यक्ति के लिए क्या करणीय है, क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और किसके नामों का उच्चारण करना चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछते हैं और वास्तव में इस प्रकार के प्रश्न हम सबके हृदय में हैं। तो ये परीक्षित महाराज के प्रश्न केवल उनके लिए नहीं थे, वो सब हम सबके लिए हैं। तो शुकदेव गोस्वामी ने जब राजा परीक्षित जो मृत्यु के नजदीक खड़ा है, सातवें दिन तक्षक उनको डसने वाला है, मृत्यु होने वाली है, उनके इस प्रश्न को सुना तो शुकदेव गोस्वामी बहुत अधिक उत्साहित हुए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हारे ये जो प्रश्न है सारे जगत का कल्याण करने का सामर्थ्य रखते हैं। तुम्हें शुकदेव गोस्वामी ने कहा ये सारे प्रश्नों का केवल एक में उत्तर है। क्या है उत्तर? तुमने जो प्रश्न पूछा किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, किसके नामों का कीर्तन करना चाहिए और किसके बारे में श्रवण करना चाहिए, तो शुकदेव गोस्वामी एक लाइन में कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्यच नित्यदा। उन्होंने कहा कि हे शुकदेव, उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, केवल जो परम भगवान हरि है, परम भगवान कृष्ण है, उनके बारे में व्यक्ति को श्रवण करने की लालसा को अपने हृदय में जागृत करना चाहिए, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और अपना ये जो शरीर है, मन है, वाणी है, जिसको कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज 7 दिनों तक भगवान के बारे में श्रवण करने की लालसा को अपने हृदय में धारण करके आश्रय ग्रहण करते हैं शुकदेव गोस्वामी का। तो ये जो भगवान के बारे में श्रवण है वो बहुत अधिक पावरफुल है, बहुत अधिक लाभदायक है। शास्त्र कहते हैं श्रुणमता स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, कि व्यक्ति को परम भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। इतना ही नहीं कि केवल व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, बल्कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जब भगवान कृष्ण बहुत ही छोटे बालक थे, स्वयं कृष्ण ही अपने बारे में श्रवण करने के लिए लालायित हो जाते हैं, अपनी कथा के प्रति ही कृष्ण आकृष्ट हो जाते हैं। जब कृष्ण बहुत ही छोटे बालक थे तो माता यशोदा उनको सुलाने से पहले उनको लोरी सुनाया करती थी या कृष्ण कथा सुनाती थी। तो एक दिन गोकुल में कृष्ण छोटे से बालक, तो जो रात्रि के समय माँ यशोदा ने उनको बेड के ऊपर सुलाया और उनके ऊपर थोड़ा सा क्लोथ, थोड़ा सा कपड़ा डाला, तो माता यशोदा उनको वर्णन करने लगी कि हे कृष्ण आप ध्यान से सुनो। तो कृष्ण बोलने लगे कि हाँ 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 माता यशोदा आप सुनाओ मुझे। तो माता यशोदा कहने लगी कि एक महान राजा थे, उस राजा का नाम था दशरथ और उनके कई पुत्र थे, उनमें से प्रमुख कौन थे? राम। तो भगवान राम के बारे में स्वयं कृष्ण अपनी ही पूर्व लीला के बारे में सुनने के लिए तत्पर हो गए। तो माता यशोदा जैसे जैसे परम भगवान के बारे में राम का वर्णन करने लगी, राम की महिमा को बोलने लगी, उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान जो राम है उनको अचानक वनवास जाना पड़ा लक्ष्मण के साथ और अपनी जो भारिया है सीता देवी के साथ। तो भगवान कृष्ण पेड़ में लेटे लेटे माता यशोदा के मुख कमल को देखते हुए उनके वाणी को अटेंटिव श्रवण करते हुए जा रहे थे। तो ऐसे माता यशोदा ने कहा, लेकिन अचानक वो जो सीता देवी है उनका अपहरण करता है रावण। जैसे ही ये शब्द कृष्ण के कानों में गए, कृष्ण कितने छोटे थे? बहुत ही छोटे बालक। और जैसे ही ये शब्द उनके कानों में प्रवेश हुए हैं, कि सीता देवी का अपहरण रावण के द्वारा हुआ है, ये कथा सुनते सुनते कृष्ण बेड से खड़े हो जाते हैं। अब सोचो, खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसा लंबा करते हुए चिल्लाने लगते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण क्वाधनुर क्वाधनुर, संस्कृत में कहते हैं सौमित्रे सौमित्रे क्वाधनुर क्वाधनुर। सौमित्र में सौमित्रा के जो नंदन है, लक्ष्मण है, वो खड़े होकर बेड में ही संध्या के समय या रात्रि के समय भगवान कृष्ण कहने लगे हैं कि मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। तो इस प्रकार से परम भगवान स्वयं ही अपने बारे में शब्द करने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं, इतने लालायित होते हैं, क्योंकि ये जो कृष्ण कथा है ये बहुत आकर्षक है, बहुत स्वीट है, एक अमृत के समान है। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है वो कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी या व्यासदेव कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है, उसको चाहे जहां से भी खाओ, जैसे स्वीट कैंडी होती है, उसको आप किसी भी कोने से खाने का प्रयास करो, वो हमेशा क्या लगेगी, मधुर, वो हमेशा स्वीट महसूस होगी। तो उसी प्रकार से परम भगवान के जो कार्यकलाप है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये उसी प्रकार से है जो हमेशा कानों को आनंद देने वाली है, हृदय को आनंद देने वाली है और मन को भी आनंद प्रदान करने वाली है। क्योंकि ये तीन प्रकार से इन तीन सालों में हम बहुत अधिक कष्ट अनुभव करते हैं। अधिक से अधिक लोग इस संसार में मानसिक कष्टों में हैं, हृदय हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, लेकिन जब वो लोग कृष्ण कथा का आश्रय लेंगे तो नेचुरली इस सारी विपदाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने जब शुकदेव गोस्वामी को देखा और उनके सामने बैठ गए हजारों लोगों के बीच में, और उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ। किसके बारे में सुनना चाहता हूँ? कृष्ण के बारे में। और वास्तव में कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में सुनने के लिए हमें तत्पर या उत्साहित या लालायित नहीं होना चाहिए। और ऐसे कृष्ण कौन से कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ, उसका वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज ने कहा, अवतीर्ण यदोर वंशे भगवान भूत भावना। मैं तो ऐसे कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ जिन्होंने अवतरित हुए हैं, कहा इस भूतल पर, और यदु वंश में वो अवतरित हुए हैं, और भगवान भूत भावना, ऐसे भगवान जो भूत, भूत का मतलब है जीव और भावना का मतलब है प्रेम। मैं तो ऐसे कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ जो मेरे प्रेम के विषय हैं, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ लव। कौन से कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ जो मेरे प्रेम के विषय हैं, या ऐसे कृष्ण जिनसे सारा प्रेम बाहर निकल रहा है, प्रेम से जो परिपूर्ण है। तो परीक्षित महाराज कहते कि मैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रेम के ऑब्जेक्ट हैं, प्रेम के विषय हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो कृष्ण के बारे में जो श्रवण है, ये जो कृष्ण कथा है, ये बेस्ट मेडिसिन है। कृष्ण कथा से बढ़कर जो दवाई है वो ये जगत में नहीं है। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने कहा कि पहले तो कृष्ण मेरे प्रेम के विषय है, और दूसरा क्या है, कृष्ण कथा ये भव औषधि है। इसलिए मुकुंद माला में कुलशेखर वर्णन करते हुए कहते हैं, राजा कुलशेखर वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये कभी भी विनाश इसका होने वाला है, और ऐसे विनाशशील शरीर के लिए और ये शरीर के जो जॉइंट्स हैं वो हमेशा हमें कष्ट देने वाले हैं और इसका पतन होने वाला है। तो राजा कुलशेखर कहते कि अरे मूर्ख व्यक्ति, शतसंधि जर्जरम किम औषधम पृच्छसि मूढमते कृष्ण रसायनम पिबम। वो कहते कि अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारा शरीर में इतनी सारी कठिनाई आने वाली है, इतनी यातनाओं का आपको यातनाओं को सहन करना होगा, तो उसे मुक्त होने के लिए दवाई क्यों नहीं पूछ रहे हो? और बेस्ट दवाई क्या है? कृष्ण रसायनम पिबा। तो कृष्ण का जो रसायन है, कृष्ण कथा है, उसको श्रवण करने का या उसको पीने का प्रयास करो। इसलिए शास्त्र कहते हैं परम औषधय भव निवारणे सतत कीर्तन करे भव कीर्तने। तो इस जगत से पार होने के लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो कृष्ण कथा है। और जो मुक्त जीव है वो सदैव ऐसे भगवान की ये जो कथा है उनका वर्णन करते हैं, उनका गान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस चीज की जो महिमा है उसका विशेष वर्णन किया गया है। तो ऐसे परम भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं तो कृष्ण कथा दवाई को पीना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बीमारी क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी मेरे पास बीमारी है। तो ऐसी जो कृष्ण कथा है वो तीन इफेक्ट्स हमारे ऊपर डालती है। जब हम भगवान के बारे में नित्य रूप से श्रवण करते हैं तो क्या होता है, तीन प्रकार के इफेक्ट्स हम अनुभव करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा है कि सबसे पहला इफेक्ट क्या है परम भगवान के बारे में सुनने का, वो ये है कि हमारे हृदय में इंद्रिय भोग करने की जो प्यास है, इंद्रिय तृप्ति करने की जो स्ट्रॉन्ग भावना है, वो भावना खत्म हो जाती है। उसकी जो प्यास है, लालसा है, वो टोटली जीरो हो जाती है। जब आप गंभीरता से निरंतर श्रद्धा के साथ परम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। और दूसरा क्या है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस कृष्ण कथा को निरंतर पान करता है, निरंतर श्रवण करता है, तो उसके हृदय में जो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, मैं की जो भावना है, वो उसके हृदय से खत्म हो जाती है, उसको छोड़कर चले जाती है। और तीसरी चीज है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो मन का जो एजिटेशन है, मन की जो चंचलता है, विषयों के प्रति जो तीव्र आकर्षण है, वो टोटली उस आकर्षण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। केवल केवल वो गंभीरता से श्रद्धा के साथ कृष्ण के बारे में श्रवण करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, या भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, एनेची औषधि माया नाशी बार लागे। ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने ये औषधि को वो लेके आए हैं अपने साथ। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने कहा कि ये दो चीजें हैं, पहले तो कृष्ण मेरे प्रेम के विषय है, दूसरा क्या है, कृष्ण कथा क्या है, मेडिसिन है, और तीसरा मैं कृष्ण के बारे में इसलिए सुनना चाहता हूं कि कृष्ण मेरे फादर या फोर फादर पांडवाज आदि हैं, उनके प्रोटेक्टर हैं, उनके रक्षक हैं। और वास्तव में इस संसार में कृष्ण से अधिक हमारे कोई अच्छा कोई हमारा रक्षक नहीं हो सकता। जब उत्तरा के गर्भ में ये परीक्षित महाराज थे, खुद पांडवों के आखिरी वंशज, तो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र भेजा उनको मारने के लिए, तो ये गर्भवती उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र को अपने ओर आते हुए देखकर जोर जोर से प्रार्थना करती है। और वो कहती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते, हे महायोगी कृष्णा, मैं मेरे सामने मृत्यु को देख रही हूँ, और आप क्या करो, प्लीज मेरी रक्षा करो। तो परम भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर अब उनके जो बालक है, पांडवों के जो आखिरी वंशज है, परीक्षित की रक्षा करते हैं। तो वास्तव में पर्सनली परीक्षित का कृष्ण रक्षा करते हैं या उनके रक्षक हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे कृष्ण के बारे में मैं तो केवल सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अधिक टाइम नहीं है, किसके पास जीने के लिए समय है। हाँ, जैसे रानी एलिजाबेथ थी, लंदन की जो रानी है, रात्रि के समय सो गई, और जब सुबह उसके सर्वेंट्स या दासियां जब उसके बेडरूम में गए तो देखा वो मरी हुई है। तो मतलब जो मृत्यु है वो हमें कभी भी दबोच सकता है, तब क्यों इंतजार करें, बल्कि हमें अपने लाइफ में इमरजेंसी समझनी चाहिए, कृष्ण की सेवा की, कृष्ण भक्ति की, कृष्ण श्रवण कीर्तन की, कि लाइफ में बहुत सबसे अधिक कोई इमरजेंसी है तो वो यही है कि कृष्ण को मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ का प्राइम ऑब्जेक्ट बनाना, कृष्ण मेरे लाइफ के परम जो वस्तु है वो बनाना। तो ऐसे परीक्षित महाराज कृष्ण के बारे में सुनने के लिए इन चीजों का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे कृष्ण के बारे में मैं जब सुनूंगा तो क्या होगा कि जो मेरे जीवन की परम सिद्धि है कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण, उसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और अंत समय में अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम समय में कृष्ण के जो कृष्ण का जो स्मरण है वो मेरे लिए स्वाभाविक हो सकता है। तो इन चार कारणों के लिए परीक्षित महाराज कृष्ण के बारे में सुनना चाहते थे। पहला तो यही था कि कृष्ण मेरे प्रेम के विषय है, और दूसरा क्या है, कृष्ण कथा एक मेडिसिन है, और तीसरी चीज परीक्षित महाराज कहते हैं कि कृष्ण असली प्रोटेक्टर है, कृष्ण असली रक्षक है, और कृष्ण ही परम वस्तु या परम जो लाभ है, परम जो सिद्धि है वो प्रदान करने वाले हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कृष्ण के बारे में सुनना या कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। यदि भारत में हम वोट करें, वोटिंग, भगवान राम एक और खड़े हो जाए और भगवान कृष्ण के लिए, तो ज्यादातर लोग किसको वोट देंगे, भगवान राम को। लेकिन कृष्ण के जो कार्यकलाप है वो बहुत संशयमय है, बहुत रहस्यमय है, क्रिटिकल है, रहस्यमय चरित्र है कृष्ण का, जिनको जानना बड़ा ही कठिन और विचित्र है। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि कृष्ण भगवद गीता का तो धर्म शास्त्र का उन्होंने ये दिया, धर्म शास्त्र को स्थापित किया। लेकिन जब कई बार लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे कृष्ण आचरण कैसे करते हैं, जिन्होंने धर्म शास्त्र का उपदेश दिया लेकिन अपने मामा को मारा, उन्होंने मामा के साथ उनका अच्छा संबंध नहीं था, उनके मामा ने कई सारे खिलौने आसुरों के रूप में उनको भेजे, पहले तो खिलौने अच्छे लगे नहीं, और जब मथुरा पहुंचे तो मामा भी अच्छा नहीं लगा उनको। उन्होंने क्या किया, पहले तो खिलौने तोड़ दिए, जाकर फिर मामा जी को भी परमानेंटली ब्रेक डाउन कर दिया, परमानेंटली मार दिया। तो इस प्रकार से लोग जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं उनको समझ नहीं पाते उनके कार्यकलापों को, क्योंकि कृष्ण के कार्यकलाप सर्वाधिक रहस्यमय है। जनरली लोग जब कृष्ण के बारे में बातें करते हैं तो सर्वप्रथम वो कहते कि ऐसे कैसे भगवान है, जिन्होंने जब तक वृंदावन में रहे तो हजारों गर्लफ्रेंड्स हैं, और उसके बाद मथुरा गए उसमें वो संतुष्ट नहीं थे, मथुरा गए तो फिर द्वारका जाकर कितने रानियों से उन्होंने विवाह किया, 16108। तो जब ये सब चीजें कृष्ण के बारे में बाहरी रूप से कोई देखता है, बाहरी रूप से इसको समझने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से शुकदेव गोस्वामी कहते हैं वो टोटली भ्रमित हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण के बारे में जानने के लिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदो, कि मुझे तो केवल परंपरा के द्वारा या मेरे भक्तों के माध्यम से कोई व्यक्ति जान सकता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से निवेदन करते हैं, जब तक वो कृष्ण लीलाओं का श्रवण करना शुरू ही कर रहे थे, उन्होंने कहा हे शुकदेव गोस्वामी आप क्या करो, बोलना शुरू करो, कृष्ण की महिमा का वर्णन करो, मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, क्योंकि आप जो परम भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं वो बहुत अधिक अमृतमय है, मैं उसको अधिक से अधिक सुनना चाहता हूँ। और वास्तव में कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने का उसका स्थान क्या है, कानों के द्वारा। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने कहा प्रवेश करण रंध्रेन, कृष्ण कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और हृदय में जाकर कृष्ण परमानेंटली वहां निवास करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि हर एक व्यक्ति को परम भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि भक्ति का जो सर्वप्रथम अंग है वो है श्रवण। भक्ति रूपी महल किसी को खड़ा करना है तो वो यदि इस पहले कार्य को गंभीरता से नहीं लेगा तो वो अपने जीवन में भक्ति रूपी महल को कभी भी खड़ा नहीं कर सकता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र इस चीज पर हमेशा जोर देते हैं और इसी का वर्णन शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कृष्ण कथा या कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज जब कृष्ण के बारे में सुनने की लालसा को व्यक्त कर रहे थे तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे परम भगवान कृष्ण के बारे में बताइए। तो शुकदेव गोस्वामी कृष्ण लीला का वर्णन करने लगे। तो कृष्ण लीला का वर्णन उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने कहा क्यों कृष्ण इस जगत में अवतरित हुए, क्यों उन्होंने यदुवंश को स्वीकार किया, क्यों कृष्ण देवकी के पुत्र थे लेकिन वो ब्रज में जाकर क्यों रहे। तो ऐसे कई प्रश्नों का हम उन्होंने वर्णन किया परीक्षित महाराज ने, और उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शुकदेव गोस्वामी कृष्ण कथा या कृष्ण का जो प्राकट्य है, कृष्ण का जो आविर्भाव है, उसका वर्णन करने लगे। तो ऐसे ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, हम सब उससे परिचित हैं। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा जब ये पृथ्वी देवी बहुत अधिक जो आसुर अपने पद पोजीशन और अपने सुविधाओं से सेनाओं से बहुत अधिक गर्वित हो गए थे, ऐसे जो राजागण हैं जिनके द्वारा ये पृथ्वी बहुत अधिक बोझ या भार को अनुभव कर रहे थे। पृथ्वी आनंद कब अनुभव करती है, पृथ्वी के ऊपर जब महान महान भक्त एक एक कदम रखता है और चलता है तो पृथ्वी गदगद हो जाती है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपर्क, कि जो भगवान के महान भक्त हैं जब वो पृथ्वी में चलते हैं कृष्ण की महिमा का गान करते हैं तो पृथ्वी सोचती है कि मैं तो अभी बहुत अधिक सुशोभित हो गई हूं। पृथ्वी के अलंकरण उनके कृष्ण के डिवोटीज हैं। तो जब ऐसे गर्वित राजाओं के द्वारा पृथ्वी बहुत अधिक कष्ट महसूस कर रहे थे और रो रहे थे तो उसने जाकर ब्रह्मा को अप्रोच किया एक गाय का रूप धारण करके, और ब्रह्मा के पास जाकर आंखों से आंसू लाते हुए रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए दुख भरी वेदनाओं से उन्होंने ब्रह्मा को कहा कि मैं बहुत अधिक विपदा में हूँ, मेरी विपदा को आप दूर कीजिए। तो ये जब सुना तो ब्रह्मा उनके साथ शिवजी और सबको लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। इस भौतिक जगत में भी एक आध्यात्मिक स्थान है जिसको कहते हैं श्वेत द्वीप। तो ऐसे क्षीर सागर के तट पर जाते हैं जहाँ भगवान क्षीर क्षीरोदक शाही विष्णु के रूप में निवास करते हैं। तो वहाँ जब ब्रह्मा जी जाते हैं इन सारे देवताओं के साथ और वहाँ जाकर ध्यान मग्न होते हैं और भगवान के संदेश को सुनते हैं, बाकी कोई देवतागण सुन नहीं पा रहे थे, केवल ब्रह्मा ही ऐसे क्वालिफाइड थे योग्य थे जिन्होंने परम भगवान का ये जो संदेश है उसको सुना। और फिर ब्रह्मा ने उस संदेश को सारे देवताओं को कहा, उन्होंने कहा कि हे सारे देवताओं परम भगवान कृष्ण वसुदेव के घर में आप प्रकट होने वाले हैं तो आप सबको क्या करना चाहिए, ऐसे कृष्ण के प्रीति है तो उनकी संतुष्टि के लिए आपको वृंदावन या मथुरा आदि स्थानों में प्रकट होना चाहिए। तो फिर देवतागण और सारे जो देवियां आदि हैं ये सारे देवतागण ब्रज के अलग अलग स्थानों में वृंदावन मथुरा और कई स्थानों में प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर से वापस चले जाते हैं। तो जब ये देवतागण अलग अलग स्थानों में प्रकट होते हैं कृष्ण प्रकट होने से पूर्व, तो जो कृष्ण हर समय एक ही स्थान में प्रकट होते हैं वो उनकी नित्य लीला भूमि है जिसको कहा जाता है वृंदावन या ब्रज। ब्रज का मतलब ही है ब्रजती इति गावहा, कि जहाँ नंद महाराज या जहाँ गौवे गोपिकाएं गोप सखा इन सब ने जहाँ जहाँ भ्रमण किया है उन स्थान को ब्रज कहा गया है। तो ऐसे परम भगवान इस स्थान में प्रकट होते हैं वृंदावन की भूमि पर। तो जब मथुरा में जो शूरसेन है उनका जो पुत्र था जिनका नाम था वसुदेव, वसुदेव और देवकी का जब विवाह हुआ तो उनके जो भाई थे देवकी के कंस तो बहुत अधिक उत्साहित हुए। उन्होंने कहा कि मैं जो अपनी बहन है उसको छोड़ने के लिए जाऊंगा और सारथी का काम करते हुए है या रथ का जो लगाम है घोड़े की जो लगाम है अपने हाथ में लेकर पीछे वसुदेव और देवकी विद्यमान है बैठी हुई है उनको लेकर कंस उनके रथ को हाथ रहा था। तो अचानक ही जब थोड़े दूर गए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब कंस उस रथ को लेते हुए जा रहा था तो हजारों रथ उनके इर्द गिर्द चल रहे थे और बीच में कंस का वो जो रथ था जिसमें वसुदेव और देवकी बैठी हुई थे और वो सारा आनंद का वातावरण था। लेकिन अचानक वो आकाशवाणी को सुनते हैं जिस आकाशवाणी के द्वारा उसमें क्या कहा गया था, आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूल कंस जिस बहन का रथ की रस्सी तुम लेकर आगे बढ़ रहे हो रथ को हाथ रहे हो उसी का जो आठवां गर्भ है वो आपके मृत्यु का कारण बनेगा। और उसमें ये डिफाइन नहीं था कि वो पुत्री होगी या पुत्र होगा, वो तो कहा था कि गर्भ होगा कोई शिशु जन्म लेगा वो तुम्हारे मृत्यु का कारण था। जैसे ये मृत्यु शब्द सुना तो इतना बलवान कंस वो भी भयभीत हो जाता है और वो भी क्या करता है इतने जो जिनसे इतना अधिक प्रेम जितना इतना अधिक स्नेह था देवकी से उनको भी मारने के लिए तत्पर हो जाता है। उसी क्षण जो कंस है तुरंत ही अपने एक हाथ में तलवार लेता है और दूसरे हाथ में देवकी के केशों को बालों को पकड़ता है और उनकी गर्दन काटने के लिए तत्पर हो जाता है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को अपने शरीर को बचाने के लिए किसी का भी वध करने के लिए वह तत्पर हो सकता है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति को कोई चीज सबसे अधिक प्रिय है तो वो क्या है, अपना शरीर। उसके बाद बाकी सारी चीजें हमें प्रिय हो सकती हैं लेकिन सर्वाधिक इस जगत में व्यक्ति किसी चीज से प्रेम करता है तो वो अपने शरीर से प्रेम करता है और बाद में फिर अपना धन है अपना घर है अपना परिवार है अपना देश आदि है। तो ऐसा कंस जब इस प्रकार का आचरण कर रहा था तो वसुदेव उनको देवकी का जो जीवन है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो वसुदेव पहला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या करते हैं वसुदेव, उनको प्रचार करते हैं उपदेश प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि अरे कंस तुम जो इस मृत्यु से भयभीत हो रहे हो तुम्हें तो हमेशा सोचना चाहिए कि जिस समय माँ के जन्म से माँ के गर्भ से इस शरीर ने जन्म लिया है उसके साथ ही साथ मृत्यु ने भी जन्म लिया है क्योंकि माँ के गर्भ से कोई एक चीज जन्म नहीं लेती, माँ के गर्भ से हमेशा दो चीजें जन्म लेती हैं, एक तो है जन्म और दूसरा है मृत्यु। तो वसुदेव ने कहा कि यह शरीर एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है और वास्तव में हम हर क्षण मर रहे हैं। इस प्रकार से वसुदेव उनको उपदेश दे रहे थे, कंस को बता रहे थे कि क्यों आप इतना अधिक भयभीत हो रहे हो, क्यों मृत्यु के लिए इतना अधिक भयभीत हो रहे हो, क्योंकि मृत्यु क्या है निश्चित है। उसी का वर्णन भगवान ने भगवद गीता में किया है। भगवान कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे उपदेशों को जब उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि आपको इतना अधिक सोचना नहीं चाहिए, इतना अधिक भयभीत नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जो वसुदेव है उनके उपदेशों को जो कंस है वो स्वीकार नहीं कर पाया और वो बिल्कुल स्थिर था कि मैं क्या करूंगा, इनका वध करूंगा, देवकी को मारूंगा। तो जो वसुदेव है उन्होंने दूसरी योजना बनाई। वसुदेव ने सोचा ये जो मूर्ख है वो उपदेशों के द्वारा मार नहीं रहा है तो उसके लिए उन्होंने दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि हे कंस तुम्हें तो वसुदेव से समस्या नहीं है, ये देवकी से समस्या नहीं है, देवकी का जो आठवां गर्भ है जो भी पुत्र है उनको मृत्यु का कारण है तुम्हारे, तो मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि जो भी बालक जन्म लेगा वो मैं आपको प्रदान करूंगा। तो इस वचनों का पालन करने के लिए वसुदेव तत्पर हो गए। और कंस इतना आसुरिक स्वभाव का था, फिर भी उसका बहुत अधिक विश्वास था, क्योंकि जो वसुदेव है वो बहुत अधिक स्थिर है, अपने वचन में अटल है। जिस प्रकार से जो नीच व्यक्ति है वो कोई भी चीज करने के लिए तत्पर हो सकता है, किसी भी हद तक अपने आप को गिर सकता है, गिरा सकता है, तो उसी प्रकार से जो साधुगण है, भगवान के महान भक्त है, कृष्ण की सेवा के लिए कोई भी किसी भी चीज का वो त्याग करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। तो जब इन सब वचनों को सुना और कंस ने कहा कि ठीक है, यदि वो सारे पुत्र आप मुझे प्रदान करते हो तो मुझे कोई भय नहीं है। तो कुछ दिन बीत जाते हैं तो वसुदेव को पहला पुत्र प्राप्त होता है, उनका नाम वो कीर्तिमान रखते हैं। तो ऐसे छोटे से बालक को उठाकर, देवकी रो रहे थे, ऐसे छोटे से बालक को उठाकर अब वो कंस के पास गए और कंस के हाथों में उनको सौंप रहे थे। तो कंस ने कहा कि अरे वसुदेव, इतने अधिक अपने वचनों में दृढ़ है। तो कंस का हृदय भी पिघल गया, उन्होंने कहा ये पहले बच्चे से मुझे कोई कठिनाई नहीं है, इस पहले बालक को वापस ले जा सकते हो। तो वसुदेव जब वापस ले गए तो उस समय नारद आते हैं, तो नारद सही समय में पहुंचते हैं, क्योंकि नारद हमेशा उनको जल्दी होती है कि कृष्ण जल्द जल्द प्रकट हो जाए, कृष्ण इतना लंबा समय क्यों लगाए अवतरित होने के लिए। तो नारद जब कंस के पास गए उनके सभागृह में, तो नारद अपने हाथ में एक लोटस का जो फ्लावर है ये एक फूल ले गए जिसमें 8 पंखुड़िया थी, हरिवंश पुराण में ये वर्णन आता है। तो ऐसे फूल को ले जाकर उनके पास उनके सामने रखा और कहा कि अरे कंस तुम इन पंखुड़ियों को गिनो। उन्होंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, फिर उन्होंने कहा रिटर्न जाओ। तो इस प्रकार से नारद ने कहा कि ये जो विष्णु है या कृष्ण है वो बहुत चलाक है, वो चाहे तो फर्स्ट में वो 8वें में पहले बन सकते हैं या पहले में 8वें बन सकते हैं, वो किसी भी समय किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हैं। तो इसको सोचकर कंस बहुत अधिक क्रूर हो जाता है, तुरंत वसुदेव के द्वारा लाए गए जो पहला पुत्र है उसका वध करता है। और धीरे धीरे हम सोचते हैं कि जो देवकी है 8 पुत्रों को जन्म देती है और उन 8ों में जो 6 पुत्र है पहले उनका वो वध कर देता है। ये 6 पुत्र वास्तव में कंस का नाम कंस पूर्व जन्म काल निमित्त है, और ये 6 पुत्र कंस के ही पुत्र थे जिनको इस जन्म में वो अपने हाथों से मार रहा था, जिनको षड गर्भ कहा गया है। तो ऐसे कंस इनका वध करता है। और जब 7वें के रूप में भगवान कृष्ण अपनी जो योग माया शक्ति है उसको आदेश देते हैं कि हे योग माया आप ब्रज में जाओ और क्या करो, ब्रज में जाकर सारे जो वृंदावन के लोग हैं उनके हृदय से भय को दूर करो, क्योंकि मैं अभी प्रकट होने वाला हूं। लेकिन उससे पहले तुम क्या करो, मेरा जो पूर्ण अंश है वो देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में निवास करने वाला है और उनका नाम बलराम है। तो अभी वो देवकी के गर्भ में है, 7वें जो पुत्र है बलराम, उनको देवकी के गर्भ से आप निकालो और रोहिणी के गर्भ में वृंदावन में ट्रांसफर करो। तो ये जब उन्होंने कहा तो देवकी के गर्भ से जो योग माया है बलराम को ट्रांसफर करते हैं रोहिणी के गर्भ में, और सारे मथुरा में ये न्यूज फैलता है कि जो देवकी का जो 7वां गर्भ है में भी गर्भपात हो गया है या विनाश हो गया है। और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम क्या करो, मेरी छोटी सी बहन के रूप में नंद महाराज और यशोदा के ग्रह में जन्म लो। इस प्रकार से उस आदेश की पूर्ति योग माया ने की, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है। और उसके उपरांत परम भगवान कृष्ण वृंदावन के इस वनों में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण फिर सबसे पहले मथुरा में प्रकट होते हैं। किस प्रकार से अवतरित होते हैं, भगवान का जो जन्म है वो हमारे जन्म के समान नहीं है। हम अपने कर्मों को भुगतने के लिए कई प्रकार के कष्टों को झेलते हुए इस संसार में जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। लेकिन परम भगवान जब प्रकट होते हैं तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि कृष्ण इस जगत में अवतरित होते हैं। अवतरित का मतलब है कि वैकुंठ से उतरना, देवतागण अवतार नहीं ग्रहण करते, देवतागण इसी जगत में कष्ट अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परम भगवान वैकुंठ से उतरते हैं नीचे, इसलिए उनको अवतरण कहा गया है, उतरण नीचे आना। तो ऐसे भगवान सर्वप्रथम प्रकट होते हैं वसुदेव के मन में, क्योंकि वसुदेव सारे तीन गुणों से ऊपर है, शुद्ध है, सत्व गुण में स्थित है, और वसुदेव के मन से या उनके हृदय से परम भगवान ट्रांसफर हो जाते हैं। किनके मन में? देवकी के मन में। कि ये भौतिक इस जगत में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो श्री पुरुष के संग के द्वारा कोई जीव जन्म लेता है, लेकिन कृष्ण के साथ ऐसे नहीं है, परम भगवान का जन्म इस प्रकार से नहीं है। इसलिए परम भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यो व्यक्ति तत्वतः, कि मेरे जो जन्म है, मेरे जो कार्यकलाप है वो दिव्य है, उन कार्यकलापों को कोई व्यक्ति यथावत या तत्व से जानता है तो वो व्यक्ति इस जगत में पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे भगवान देवकी के हृदय में प्रविष्ट हुए और फिर उनके गर्भ में उन्होंने वास किया। तो जो देवकी है बहुत अधिक उनका जो सौंदर्य बढ़ गया था, जो वो कारागृह में थी तो वहां भी सारा प्रकाश में वातावरण हो गया था और बहुत अधिक तेजवान लग रहे थे। उसको देखकर जो कंस है वो सोचते हैं कि देवकी पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लग रही थी। इसका मतलब यही है कि परम भगवान कृष्ण ने उनके गर्भ में निवास ग्रहण किया है। फिर वह सोचने लगा, यदि मैं इस गर्भवती देवकी की हत्या करो तो फिर आठवें पुत्र से मुझे कोई भय नहीं रहेगा। लेकिन फिर वह दूसरी बात भी सोचने लगा। उन्होंने कहा, जो द्वेषी व्यक्ति है, ईर्ष्यालु है, क्रूर है, इस प्रकार का पापमय आचरण कोई करता है तो उसके जीते जी सारे लोग उसकी निंदा करते हैं और उसको मृत्यु होने के बाद भी सारे जगत में उसका अपयश फैलता है, उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उसका ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है। तो उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, इसको मैं मारूंगा नहीं, इंतजार करूंगा आठवां जो मेरा शत्रु है। तो फिर कुछ ही दिनों में परम भगवान कृष्ण मथुरा में कारागृह में जन्म लेते हैं, जेल में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस भौतिक जेल से बाहर निकालने के लिए। तो जैसे भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं, ऐसे में कि फिर प्रसूति की वेदना से देवकी बड़ी रो रही थी, चिल्ला रही थी और कृष्ण जन्म ले रहे थे, नहीं, कृष्ण अपीयर प्रकट हुए उनके सामने। और कैसे प्रकट हुए हैं? श्रीमद् भागवतम कहता है कि परम भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, चार भुजाएं जिनका मुकुट किरीट से मुकुट उनका बना हुआ था, कानों में कुंडल थे, सारे आभूषण वस्त्र आदि धारण किए थे, और परम भगवान ने जो कौस्तुभ मणि है वो धारण किया था, और उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था। तो ये परम भगवान का चिन्ह है, किसी और के उसमें आप देख नहीं सकते। जो श्रीवत्स चिन्ह क्या है कि परम भगवान के छाती पर हमेशा जो बाल है वो गोल्डन फॉर्म होता है, गोल्डन बालों का रोमावली होती है, श्रीवत्स का वो चिन्ह है जहां सदैव लक्ष्मी निवास करती है। और भगवान जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं वो उनको जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था और दहेज के रूप में क्या मिला था भगवान को? कौस्तुभ मणि मिला था। तो इस प्रकार से इन आभूषणों को, इन अलंकारों को कृष्ण धारण करके प्रकट हुए चतुर्भुज फॉर्म में, और इतने सौंदर्यवान थे जिनको देखकर वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये तो परम भगवान है। तो उनको प्रार्थना करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। तो देवकी ने क्या किया, देवकी भी प्रार्थना करने लगी और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप अपना ये जो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा आपने धारण किया है, कृपा करके आप एक जन सामान्य व्यक्ति के रूप में आइए, छोटे से बालक के रूप में आई है, अन्यथा ये जो कंस है ये आपके आपको हानि पहुंचाएगा। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं नॉर्मल एक बालक के रूप में और कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे क्या करो, वृंदावन ले जाओ, जहां वृंदावन में नंद महाराज और यशोदा के ग्रह में मुझे ले जाओ, और वहां से जो देव यशोदा के द्वारा उत्पन्न जो पुत्री है उनको वापस ले आओ। तो उनके आदेशों का पालन करके वसुदेव भगवान को बाहर ले जाते हैं कारागृह से, और जैसे ही कारागृह से बाहर निकलते हैं तो बहुत अधिक बारिश हो रही थी। जैसे कारागृह के दरवाजे में पहुंचे थे उसी क्षण कृष्ण की सेवा में जो सदैव तत्पर रहते हैं अनंत शेष, जो नेचुरल अम्ब्रेला है भगवान के लिए, तो अनंत शेष भगवान की रक्षा के लिए उनके साथ साथ चलते हैं एक छतरी की भांति, अम्ब्रेला की भांति, और यमुना दी उनको एक रास्ता देती है जिनको पार करके वसुदेव गोकुल में पहुंचते हैं महावन, जहां यशोदा और नंद महाराज निवास कर रहे थे। मध्य रात्रि का समय था जब कृष्ण प्रकट हुए थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है ऐसे कुछ इस समय जब कृष्ण प्रकट हुए, और वहां जाकर वसुदेव उनको वापस एक्सचेंज करते हैं, पुत्री को अपने साथ ले आते हैं और बालक को वहां छोड़ते हैं। और जब ये आते हैं पुत्री को वापस लाया जाता है, सुबह के समय कंस देखता है कि अरे वो आठवां बालक जन्म ग्रहण कर चुका है। तो कंस जब जाता है तो वो देखता है कि बालक नहीं है, वहां तो बालिका है जो देवकी है। वो कहते हैं कि ये तो आपकी पुत्र वधु बन सकती है, कृपा करके इसको मत मारिए। लेकिन जो क्रूर जो कंस है वो उनकी हत्या करता करने के लिए उनको उठाता है। उसी क्षण वो जो बालिका है भगवान की योग माया शक्ति वो उनके हाथ से निकलकर आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण करती है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे मारने के लिए तत्पर हो, लेकिन तुम्हें मारने वाला परम भगवान कृष्ण किसी और जगत स्थान में प्रकट हो चुके हैं और तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। तो परम भगवान प्रकट होते हैं वृंदावन में या मथुरा में, और जब यशोदा माता रात्रि के समय सो रहे थे और उन्होंने सुबह देखा कि एक बालक ने जन्म लिया है, थक गए थे, उनको ये पता नहीं था कि वो बालक है या बालिका है। तो यशोदा माता ने जब देखा कृष्ण को, तो कृष्ण को देखकर ही वो आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि कृष्ण किस प्रकार से दिख रहे थे, एक नील मणि के समान, और ऐसा नील वर्ण है कृष्ण का, श्याम सुंदर है कृष्ण। तो ऐसे नील मणि को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे पास कोई बालक है या नील मणि रखा हुआ है। इतना ही नहीं कि कृष्ण की जो देह था, कृष्ण का जो शरीर था, उसमें अपना प्रतिबिंब यशोदा को दिखने लगा। यशोदा माता उस प्रतिबिंब को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उनको लगा कि यहाँ कोई भूत पिशाच तो नहीं है। यशोदा माता नरसिम्हा नरसिम्हा उसका उच्चारण करने लगी, भगवान नरसिम्हा के नामों का उच्चारण करने लगी, और फिर देखने लगी कि ये जो बालक है बहुत ही अधिक कोमल है। वो सोचने लगी कि इसको मैं स्पर्श करूं या नहीं करूं, जिस प्रकार से मक्खन होता है, कृष्ण का बॉडी वास्तव में कैसे है, कितना सॉफ्ट है, एक मक्खन की तरह है। तो ऐसा जैसे मक्खन में आप टच करने मात्र से आपकी उंगली अंदर चली जाएगी। तो यशोदा माता ने उस बालक को देखा, सोचा मैं इसका स्पर्श करूं या नहीं करूं, क्योंकि मेरी जो उंगली है वो अंदर जा सकती है। तो फिर वो स्तनपान कराने लगे, लेकिन उनको स्तनपान कराना भी नहीं आ रहा था। तो सारी गोपिकाएं आई सुबह के समय में, और यशोदा माता और उस बालक को देखा, वो जाकर नंद महाराज के पास गए, और नंद महाराज के पास जाकर उन्होंने जोर से वर्णन करना शुरू किया कि नंद के घर आनंद भयो, कि वास्तव में नंद महाराज के ग्रह में आनंद ने जन्म लिया है। कृष्ण कौन है? आनंद घन मूर्ति है। वास्तव में हम सब लोग दिन रात एक ही चीज की खोज में है। हम बहुत सारी चीज हम कुछ कुछ बनना चाहते हैं, क्यों कुछ चीजें अचीव करना चाहते हैं, उन सब का लक्ष्य है कि हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। और आनंद कहाँ है? वास्तव में कृष्ण में है। कृष्ण सारे आनंदों के मूर्तिमान स्वरूप है। इस प्रकार से परम भगवान कृष्ण वृंदावन में वहाँ प्रकट हो जाते हैं और अपनी कई सारी लीलाएं प्रकट करते हैं। तो अभी ये जो जन्माष्टमी फेस्टिवल है, ये बहुत बड़ा सुअवसर है। कृष्ण वास्तव में प्रकट होंगे, उसके लिए हम दो प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं अपने जीवन में। जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करना एक बाहरी अरेंजमेंट है और एक आंतरिक है। बाहरी है बड़ा अरेंजमेंट करना, और दूसरा क्या है, अपने हृदय को ऐसा बनाना कि जिसमें कृष्ण आकर प्रकट हो जाए। और उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं और भगवान का धाम, इन पांच चीजों के बारे में निरंतर श्रवण करना होगा, निरंतर उसका वर्णन करना होगा। और वास्तव में परीक्षित महाराज राजा महान किंग थे, भारत वर्ष के सबसे बड़े राजा होकर भी वो अपने विनम्र आचरण से सिखाते हैं कि आइडियल किंग कैसे होना चाहिए। आइडियल किंग, आइडियल पर्सन वही है जो कृष्ण का बेस्ट सर्वेंट है, जो हर समय कृष्ण को आगे रखता है, फोकस में रखता है, अपने लाइफ का प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ लव कृष्ण को बनाता है, वो आइडियल पर्सन है, आइडियल किंग है, आइडियल व्यक्ति है। इस प्रकार से जन्माष्टमी मनाने का मतलब यही है कि कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट करना। और सरल उपाय है कलियुगा में, श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट प्रदान किया है, और वो क्या है, हरे कृष्णा, जोर से हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे, लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद 1962 में 70 साल की आयु में अमेरिका गए, इसी समय गए पिछले हफ्ते में, और उन्होंने अपना जो जन्माष्टमी है जल्द जहाज पर बनाया था अकेले। कितने लोगों ने बनाया था, अकेले व्यक्ति ने जन्माष्टमी मनाया था जहाज पर 1962 में। लेकिन अभी उन्होंने इतना प्रयास किया कृष्ण का गुणगान करने का, और अभी ये जो जन्माष्टमी फेस्टिवल है 160 देशों में मनाया जा रहा है। कितने देशों में, 160, आप सोच नहीं सकते। पिछले साल हाँ जब इस्कॉन ने गिना तो 160 देशों में जन्माष्टमी फेस्टिवल मनाया गया। तो आप सबसे यही निवेदन है, ये जो कृष्ण कथा सुनने का सुअवसर है उसका लाभ उठाइए तीनों दिनों में, और अपने जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के, वृंदावन धाम के बताए गौर प्रेम मंदिर।
हरे कृष्णा। हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। तो बहुत धन्यवाद की तरह से बड़ी ही मंथन, क्योंकि भगवान जी कृष्ण माखन बोले तो मंथन तो मंथन, इसलिए ऐसे भक्तों का हृदय मंथन जैसा होता है, और कृष्ण के साथ बिल्कुल मंथन की जैसी होती है। तो इसे थोड़ी थोड़ी एफर्टलेस थी भगवान लीलाएं और उनके अंदर की सीक्रेट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये बड़े बड़े गेटों में थोड़ी लीड है, थोड़ी लीड का उसमें प्रेशर साइन तो ऑल ऑफ अस द्वारका वासी और हमको यहाँ पर कृष्ण लीला का श्रवण कराया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से जब हम भक्तों से सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, और हम लोग लाइफ में सबके साथ ये तो आज सब गाइडेंस अगर मिलती है तो हमें भक्तों से मिलती है, भगवान की लीलाओं से मिलती है। मैंने मेरे को एक ईमेल मिली थी, उस ईमेल के अंदर बड़ा सा डिस्क्रिप्शन था अबाउट द वर्ड गाइडेंस। तो गाइडेंस की स्पेलिंग होती है जी यू एंड देन बैक, तो जी वन ऑन द बैक, तो कंप्यूटर रन कर रहा है यार, जी फॉर है, पी फॉर गॉड, यू फॉर यू, I for I, God, you and I, them.
अब ये जो डांस है गॉड यू एंड आई डांस, आपने डांस की कई सारी फॉर्म देखी होंगी जैसे सांसा, हिप हॉप, बैले, इंडो वेस्टर्न, क्लासिकल, कई तरह की डांस फॉर्म होती है ना। अब ये जो डांस फॉर्म होती है इसमें विशेष रूप से जिसमें लड़का लड़की पूरे तौर मिलकर नाचते जैसे बैले और सांसा, तो इसके अंदर दोनों जब डांस करते हैं जानते हो क्यों अच्छा लगता है देखने में, वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ना उसमें एक व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि मैं कंट्रोलर और दूसरा कहता है मैं कंट्रोल। अगर दोनों कंट्रोलर हो जाए ना तो सारा का सारा डांस गया। तो ये डांस एक्टिव डांस जितना है क्योंकि मेरी व्यक्ति सोचता है आई एम द कंट्रोल एंड यू आर द कंट्रोलर। तो उसी तरह से गॉड यू एंड आई डांस गाइडेंस, इसके अंदर हमको ये सोचना चाहिए कि ओ कृष्णा यू बी द कंट्रोलर आई बी द कंट्रोल। तो ये जो हमारी लाइफ है इट विल बी अ परफॉर्मेंस, अदरवाइज हमारी लाइफ मैच होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम चाहते हैं लाइफ मैच के बजाय मैसेज बने तो उसके लिए हम सबको ये मानना पड़ता है कि ओके गॉड यू एंड आई डांस बट यू बी द कंट्रोलर आई बी द कंट्रोल, यू प्लीज कंट्रोल मी। और जितना ज्यादा वास्तव हम कंट्रोल चाहते हैं ना उतना ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस आता है क्योंकि ना कंट्रोल करना दैट्स आर नॉट आवर नेचर। ये जितना कंट्रोल में व्यक्ति करना चाहता है ये स्ट्रेस, तो स्ट्रेस पर्सन का एक ही टिप है डोंट बी अ कंट्रोलर, लेट गॉड बी द कंट्रोलर, यू जस्ट रिलैक्स। तो यहाँ पर हम सबने जो है श्रवण किया तो कई तरह की ना इयररिंग्स आते हैं जैसे लेडीज हैं जो ये दिए रहेंगे रूबी इयररिंग, डायमंड इयररिंग, विभिन्न तरह की इयररिंग आते हैं। लेकिन एक खास तरह की इयररिंग है जिसको कहते हैं हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनना। तो जब हम सुनते हैं
शायद तो लेंगे
तो, लेकिन ये जो इयररिंग्स हैं ये हियरिंग वाली इयररिंग जल्दी कौन सुनते हैं, कौन ये इयररिंग्स कहते हैं डिवोटीज। इसे आप देखो डिवोटीज के कानों में या उनकी इतनी कोई डेकोरेशन नहीं होती है, इतनी एम्बेलिशमेंट नहीं होती है, गहने भरे ना हो, लेकिन बहुत खुश नजर आते हैं बिकॉज वेयरिंग द इयररिंग ऑफ हियरिंग। तो जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतने ही हमारे हृदय की जो तृष्णाएं हैं जो कि हमें तंग करती हैं, हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, हमारी लाइफ में जद्दोजहद है, हमारे अंदर के जो कलमश हैं वो नष्ट होते हैं, शांत होते हैं। So that's why we should hear about God more and more and more. जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया था हम सबके अंदर सुनने की इच्छा है लेकिन वो सुनने की इच्छा ऐसे डिवोटी इसी तरह से हो पाती है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं। तो इससे पहले मैं और आगे कुछ कहूँ, जैसे पहले मैं राजीव गहलोत जी जो यहाँ पर आए हुए हैं इनका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। तो वो जी एमएससी हैं और यहाँ पर वो अपने परिवार वालों के साथ अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आए हैं और कई और यहाँ पर द्वारका वासियों के लिए और भी कई जगहों पर इन वेरियस फ्रंट इन वेरी सेल्फलेसली ही सर्विंग एवरीवन। तो आज उन्होंने ये समय निकाला कि आज भगवान के बारे में सुना जाए क्योंकि अगर जनमानस की सेवा करनी है तो उसके लिए स्पेशल पोटेंसी चाहिए होती है, तो स्पेशल पोटेंसी में भी हमको भगवान से। तो गहलोत जी यहाँ पर आए हैं यहाँ जो ये स्पिरिचुअल पोटेंसी लेके जा रहे हैं ताकि आप सबकी जो है और अच्छे सेवा करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गहलोत जी प्लीज आए यहाँ स्टेज पर और दो शब्द कहें। तो थैंक यू वेरी मच प्लीज ताली हो जाए प्लीज। और साथ में अभी पीयूष गोयल प्रभु जी हैं जो कि इस्कॉन द्वारका के प्रेसिडेंट हैं, तो का वेलकम करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। श्री रुक्मी द्वारकाधीश, श्री रुक्मी द्वारकाधीश की कृपा उनका आशीर्वाद राजेश गहलोत जी के ऊपर हमेशा बनी रहे और जिस तरह से वो जिस तरह से सेवा करते आए निस्वार्थ भाव से वो कर ही रहे हैं, तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। हरे कृष्णा। हाँ दोस्त सब प्लीज बोलेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सत्य
सबसे पहले मैं यहां पर पधारे सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और विशेष रूप से जितने भी एस्कॉन के भक्त हैं मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मुझे याद है जब मैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेंबर था और प्रभु जी एस्कॉन के भक्त लोग सब लोग मिलकर आए और उस समय जमुना पार में जमीन मांगने की बात थी। मैंने कहा हमारे द्वारका में इतनी बड़ी द्वारका है और द्वारकाधीश का मंदिर नहीं है। मैंने सभी भक्तों से निवेदन किया कि आप लोग यहाँ अप्लाई करें तो हम सब मिलकर यहाँ पर बीडीए से जमीन दिलाएंगे और भक्तों ने हमारी बात मानी और द्वारका में जमीन के लिए अप्लाई किया। उसी समय हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर तय किया कि यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर बने और उसी की आज मैं ये मानता हूँ कि भगवान कृष्ण अब एक्चुअल में ये द्वारका बनी है। जब तक भगवान कृष्ण नहीं थे तो ये कैसी द्वारका। इसलिए विशेष रूप से मैं एस्कॉन के सभी भक्तों का और प्रभु जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी द्वारका को आज द्वारका नगरी आप लोगों ने बनाने का काम किया और द्वारकाधीश हमें मिल गए। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, हरे रामा, हरे कृष्ण।
तो बहुत ही सही बोला राजेश गहलोत जी ने कि भाई ये तो द्वारका है और द्वारका में रहने वाले द्वारकावासी और फिर उनके भगवान द्वारकाधीश, तो अब ये कॉम्बो एकदम परफेक्ट हो गया। तो कुछ नहीं तो अधूरा अधूरा था। तो द्वारका है लेकिन द्वारकावासी भी है लेकिन द्वारकाधीश था, तो अब द्वारकाधीश भी आ गए, तो अब ये पूरी लव स्टोरी एकदम कम्प्लीट हो गई है। लव स्टोरी कुछ अधूरी सी थी तो अभी एकदम कम्प्लीट हो गई। लॉर्ड हैज कम, तो शिशिर की महल बन रहा है, अभी छोटा महल है और यहाँ पर स्थान पे यहाँ पर आप सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा भगवान का शिशिर रुक्नी द्वारा का भी। तो इसमें सर्टनली हमें आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी दुआएं चाहिए, हाँ जिस भी तरह से आप सहयोग देना चाहें तो ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी वेलकम। तो अब नेक्स्ट कार्यक्रम, अभी तो हमने सुना लेकिन सारी इंद्रियां हमारी शुद्ध होनी चाहिए। तो कान तो हमारे शुद्ध हो गए, आप आए इस कान में, इस कान ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो इस कान, इस कान में तो आ गए होंगे, इस कान, अब कान तो शुद्ध हो गए, इन आंखों का क्या, इन आंखों में बड़ी तृष्णाएं हैं, इन आंखों की तृष्णाओं को भी शांत किया जाए, दिल को भी शांत किया जाए, तो उन तृष्णाओं को शांत करने के लिए अभी हमारे यहाँ पर एक ड्रामा होने वाला है। इसका टॉपिक है रुक्मिणी हरण,
यहाँ
से भी कुछ ड्रामा के कैरेक्टर एंट्री करेंगे
सबको, हमको
तो बैक से भी एंट्री है, यहाँ फ्रंट से एंट्री भी है,
ऑलरेडी थे यहाँ,
गॉड नोज ऊपर से भी एंट्री हो सकती है। तो सब तैयार रहिए, बहुत ही एडवेंचरस ड्रामा होने वाला है ये रुक्मिणी हरण का, किडनैपिंग ऑफ रुक्मिणी। देखिए भगवान की लीला कितनी मधुर है, एक्चुअली भगवान रुक्मिणी का हरण करने की आवश्यकता है, वो जब जो चाहे तभी हो जाए, लेकिन लीला, लीला मीन्स प्लेजरेबल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें रस हो, जिसमें मजा आए। तो भगवान की लीलाओं में क्या है, सिर्फ मजा है, मजा है, इसे उनको लीला कहते हैं। हम जो करते हैं वो है ढीला, जो भगवान करते हैं उसे क्या कहते हैं, लीला। हाँ तो ये रुक्मिणी हरण की है लीला। तो रुक्मिणी जी ने भगवान के बारे में बड़ा सुना था नारदगणी से, छुप छुप के, आप तो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, वो छुप छुप के सुना करती थी। तो छुप छुप के सुनने का एक अपना ही आनंद होता है, उससे बड़ी स्पेशल अटैचमेंट डेवलप होती है छुप छुप के सुनने से। तो छुप छुप के सुना करती थी, भगवान ने कहा इतना अगर जैसे प्रेम करती हो, चलो ठीक है मैं आप तुमको लेके जाऊंगा, लेकिन देखो भाई आंसू आती जलासन और ये जितने बाकी राजा थे या राक्षस थे यवन थे, इन्होंने भी खेल रखा था। लेकिन भगवान ने इसकी वीर रुक्मिणी को हर मेल
तो कुछ भी नहीं।
इसी तरह से हम भी जो है दुविधाओं में, संकटों में, संघर्षों में इससे घिरे हुए हैं, तो भगवान जो है हमारा हरण करके अपने धाम को ले जाते हैं। तो देयर आर मेनी लेसंस फ्रॉम दिस रुक्मिणी हरण पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड 25। तो आइए देखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदियोगी प्रभु के वैकुंठ प्रेम को, आदियोगी प्रभु एक प्रोफेशनल कम डिवोशनल इतना उत्साह दिखता है, कहानी प्रोफेशनल भी है, तो आपको डिवोशनल भी है, भक्त है आपके बुक्स पढ़ के, तो उसका ये ड्रामा ग्रुप है और इसको आज इसको क्लास मंदिर पे आए हैं यहां पर ये ड्रामा है इसके रुकने है रुकने है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदियोगी प्रभु और वैकुंठ प्रेम हरि बोल
गार्डन एट 6 o'clock देन कम्स एट 9 o'clock एट ओखला सो एवरी डे इज वर्क
एक्चुअली गॉड का ग्लोरियस है
and he is going to Pune for training with Rajasham Guru.
So we better rahiye, ye drama shuru hone wala hai hamare participants ka,
ye bhi ja rahe hain
about to come on the stage 2 tarikh aur ek aur promise to dala chahunga aage drama ke pyar
hum guest ke jaake dene ja
rahe hain ek rock show bhi hone wala hai yahan par to humne jo hai tantalik rock show ko dekhe hue hain hai na pull and the dogs out how 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 how
ye to anand
bhai pura to rock humne suna hai hum logo ko dance bhi karte hain rave parties mein late night parties mein तो उस तरह का रॉक तो दाएं दाएं डिंग डिंग झूम झूम लेकिन एक स्पिरिचुअल रॉक ऑन द नेम ऑफ गॉड वी रॉक तो ये इसकी पंच लाइन है। ये जैसे कि अभी यहाँ पर भी ना एक आरडी है जनकपुरी में, तो वहां पर भी लोग जो है डांस करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी हमने आरडी खोला है रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश डांस स्टूडियो, तो यहाँ पर भी आकर भक्तों के यहाँ डांस करते हैं, यहाँ पर भी रॉक शो होता है। सो इफ यू वॉन्ट टू रॉक योर हार्ट with pleasure, with bliss, with ecstasy, with euphoria, so stay tuned with drama ke baad aayega Hare Krishna rock. तो यहाँ पर रहेंगे और फिर हम सब यहाँ पर एक स्पिरिचुअल डांस पार्टी करने वाले हैं। कोई शर्माएगा नहीं डांस करते हुए, माताएं माताओं के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से डांस करेंगी, प्रभु जी के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से डांस करेंगे। सो दैट विल बी गॉड यू एंड आई डांस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। नाउ कम्स वैकुंठ अफेयर्स विद रुक्मिणी हरण ड्रामा। हरे कृष्णा।
Oh, केवल एक ही अस्त्र ऐसा है और वो है उसका सुदर्शन चक्र जो बाकी सब अस्त्रों को बेकार कर देता है।
जब सुदर्शन चक्र आगे बढ़ता है तो सारे दिव्यास उसे नमस्कार करके पीछे हट जाते हैं।
अब यदि आप हमारा साथ दें तो हम उस ग्वाले का नाश कर सकते हैं, क्योंकि तो संसार में केवल एक आप ही है जो उसका युद्ध में सामना कर सकते हैं।
लेकिन उसके सुदर्शन चक्र का कोई तोड़ तो होगा आपके पास। यदि उसने आपका सर काट दिया तो
अरे कैसे काटेगा जी बाल? कैसे काटेगा महादेव के बदार को? बाल लेवन को संसार में ना कोई अस्त्र मार सकता है, ना शस्त्र, चाहे वो पूरे वही हो या चंद्र वही। बाल लेवन को कोई नहीं मार सकता। कृष्ण हमारा परम शत्रु है, हमारी दोनों शक्तियों का वश कर, दोनों देवियों का स्मरण कराए।
हमेशा हमें पराजय ही मिली है।
यार बड़ा ये 11 नंबर सही, 7 नंबर सही है, 7 नंबर लगा रहे
हैं,
7 नंबर लगा रहे हैं।
प्रभु जी की एसोसिएशन
अच्छा मुझे पहले देखकर देख लिया होगा
कल बोलूं मैं तो 12 बजे हम तोड़ के
शायद
मैंने बोला था महाराज कह रहे थे साथ ही बोल रहे हैं थोड़ा सा प्रसाद
मिला मैंने ऑर्डर मुझे भी उसने बोले थे थोड़ा भी ना ला के दो आगे जाके सामने वाला है उतना भी
Yeah. Thank you. Gracias. कैसी है? नहीं इधर रखा होगा, कहीं हटा के रखा है, चोरी नहीं होती यहाँ से?
उन्होंने हटा के उधर रख दिया। आश्रम होता रहा शायद
चलेगा
मिल
जाएगी तो
मैंने बताया तो हम घर नहीं रहा था ढाई हजार लोग बढ़ते जा रहे रात को दस बजे खाने इधर तो नहीं पूछे एक बार उधर नहीं होते रात में वहाँ नहीं गया था
बहुत अच्छी किस्मत है जो
उनकी गाड़ी में जा रहे हैं। अच्छा घर में
मेरी रक्षा हो
आप थोड़ी प्रार्थना करो सकनी
सीरियस आपने पार कर दिया ओ प्रभु प्लीज अमेजिंग डिवोटीज
पता नहीं चलता कौन सेट रहते
हैं कल कहते हैं मैं थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ो कम से
लाइटिंग है
ये। दो एकड़ का अच्छा इतना दो एकड़ बड़ा होता है
अपना ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल जो है वो
एक एकड़ समथिंग
है डेढ़ एकड़ है पूरा उससे
बड़ा है
पूरा। और इवन मतलब वी आर प्लानिंग कि हम उसमें रखें इसको ना शिफ्ट में मतलब नीचे बेसमेंट टू एंड देन थ्री फ्लोर ऊपर फाइव फ्लोर तो जो पूरा म्यूजियम रहेगा दैट विल बी इन द अंडरग्राउंड
क्रिएट कर रहे
हैं। हां ग्लोरी ऑफ द्वारका गुरु महाराज ने अनाउंस किया था उसमें सारी द्वारका लीलाओं का उसमें कराया जाएगा।
डी डी है
हाँ
डीडीएस है, जीएस
है, गवर्नमेंट का है डीडीएस।
अब यूसी है या उन्हें
उनका एक बचा हुआ है ना,
सही में क्या अनाउंसमेंट किया ना, पहले द्वारिका नगरी बैठा था, द्वारिका नहीं था, द्वारिका जी से नहीं थे, द्वारिका जी से आगे अभी अक्षय द्वारिका हो गया है ना भाई।
नहीं तो बहुत प्रोमिनेंट प्लेस हो जाएगा और बहुत दिल्ली से भी ज़्यादा लोग विजिट करेंगे।
एंड फ्रंट ऑफ इतना रेडिसन वाटर, तो
हाँ रेडिसन तो
आते हैं यहाँ पे।
हाँ
अभी मैं गया था उनके पास में इनविटेशन।
अच्छा,
बिकॉज कॉर्पोरेट जितने भी बिजनेस मैन है वो मेरा ही सेवा है कि जाना है।
अच्छा,
आई विजिटेड टू, वो बोले कि हमारा रेडिसन तो आपकी तरफ झुक कर खड़ा हुआ है, व्हाटएवर यू वांट बस आप बोल दिया करो।
अच्छा,
उन्होंने कुछ डोनेशन तो नहीं दिया बट कि आपको और कुछ चाहिए जैसे कुछ गिफ्ट चाहिए, प्रोमोशन एक्टिविटीज के लिए कुछ स्पेस चाहिए, सेमिनार के लिए रूम चाहिए, और कभी गेस्ट आते हैं इंटरनेशनल तो यू कैन स्टे, हम दो तीन स्वीट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मना कर दिए, नहीं नहीं मैंने करवा दिया उनका।